Chapter 4, A Glimpse into Heaven.
Chautha bab, Asmani Manzar.
In chapter 4, John saw an open door in heaven and heard a mighty voice like the sound of a trumpet speaking to him, "Come up here, and I will show thee things which must be hereafter." Revelation 4, 1.
Chautha bab. चौथे बाब के अंदर यूहन्ना ने आसमान में एक दरवाजे को खुला हुआ देखा और नरसिंगे किसी एक आवाज़ को अपने साथ ये कलाम करते सुना कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। मुकाशफा 4 बाब उसकी पहली आयत।
Whatever concerned the church in the different ages, he had already seen. From now on, he sees the events which will come to pass in the course of time, right up to the millennial reign, the last judgment, the new heaven and the new earth.
مختلف زمانوں میں کلیسیا جن حالات میں سے گزری ان کو تو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا، لیکن اب وہ ان واقعات کو دیکھتا ہے جو ہزار سالہ بادشاہت، آخری عدالت اور نئے آسمان اور نئی زمین پر واقع ہونے والی ہیں.
The seer testifies, "And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne." Revelation 4:2.
یوحنا اپنی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے.
He actually was transferred in the Spirit into heaven and saw all things from the heavenly view.
وہ واقعی روح میں اوپر اٹھایا گیا اور جو کچھ اس کے بعد اس نے آسمان پر دیکھا وہ روحانی اعتبار سے دیکھا.
John saw the one sitting on the throne. Round about him was the rainbow as described in verses 3 and 4, and he that sat was to look upon like a jasper and a sardius stone, and there was a rainbow round about the throne in sight like an emerald, and round about the throne were 24 thrones, and upon the thrones I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunder claps and voices. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God.
اس منظر میں یوحنا نے ایک شخص کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے گرد زمرد کسی ایک دھنک تھی. اس کا ذکر تیسری اور چوتھی آیت میں یوں کیا گیا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ سنگے یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کے 7 روحیں ہیں.
God is only one.
خدا
and
ایک
he
ہی
has
ہے.
Only one spirit. But this one spirit is working during the 7 periods.
خدا ایک ہی ہے اور اس کی ایک ہی روح ہے جس نے 7 مختلف زمانوں میں کام کیا ہے.
The same is signified by the symbol of the lamb having 7 horns and 7 eyes.
اس قسم کی بات مماثلتی بڑے کے بارے میں بھی کی گئی ہے کہ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں.
The prophet Isaiah had seen the Son of Man in a 7-fold spirit constellation, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. And he shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. And he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. Isaiah 11:2-3.
यशायाह नबी ने एक आदमजात को देखा जिस पर 7 खसूसियात की एक मरकब रूह थी। उसके बारे में वो यूं लिखता है कि खुदावंद की रूह उस पर आ ठहरेगी, हिकमत और खर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और इसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी, और वह ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा। यशायाह 11 बाब उसकी 2 और 3 आयत।
We are dealing with the sevenfold work of the Spirit in the 7 periods of the New Testament Church.
हम यहाँ नए अहदनामा के 7 कलीसियाई जमानों के अंदर रूह कुद्दस के 7 मरकब कामों का जिक्र कर रहे हैं।
In the Revelation we meet repeatedly the number 7.
मुकाशवा की किताब के अंदर 7 के अदद को बार बार दोहराया गया है।
Indeed, this number is very much connected with Bible prophecy.
और इस अदद का बाइबल की पेशेंगोइयों के साथ बड़ा गहरा वास्ता है।
7 churches, 7 angel messengers, 7 promises to the overcomers, 7 seals, 7 trumpets, 7 thunders, 7 vials, etc.
मुकाशवा की किताब के अंदर 7 के अदद को बार बार दोहराया गया है और इस अदद का बाइबल की पेशेंगोइयों के साथ बड़ा गहरा वास्ता है। 7 कलीसियाएं, 7 फरिश्ते, गालिब आने वालों के 7 वादे, 7 प्याले वगैरह वगैरह।
The number 7 expresses completion.
7 का अदद तकमील को आयां करता है।
God rested from his work of creation on the 7th day.
खुदा ने 7वें दिन आराम किया।
The 7,000 years will be the kingdom of God on earth. Isaiah 11, Isaiah 65, Revelation 20 and others.
7,000 साल जमीन पर खुदावन की बादशाही का साल होगा। यशायाह 11:11, मुकाशवा 20वां बाब।
There can no other day follow the seventh day except the first one again.
7वें दिन के बाद और कोई दिन ना होगा मासवाए पहले दिन के।
Therefore, after the 7,000 years, there cannot follow another. It has to come back to the origin, to the very beginning of time. That means time must and will merge into eternity.
इसी तरह 7,000 साल के बाद मजीद किसी दिन की आमद ना होगी, बल्कि जमीन का सारा निजाम एक बार फिर अपने असल मुकाम पर वापस आ जाएगा।
John further describes in his account, And before the throne, there was a sea of glass like crystal. And in the midst of the throne, and round about the throne, were 4 living creatures, full of eyes in front and behind. And the first living creature was like a lion, and the second living creature like a calf, and the third living creature had a face like a man. And the fourth living creature was like a flying eagle. Revelation 4, 6 and 7.
یوحنا مزید بتاتا ہے کہ اس تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بلور کی مانند ہے اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں پہلا جاندار ببر کی مانند ہے اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند ہے اور تیسرا جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے مکاشفہ 4 باب اس کی 6-7 آیت
The prophet Ezekiel had also seen the Lord on the throne and round about him a rainbow. In chapter 1 he gives a very explicit description and also speaks of the 4 living creatures.
حزقیل نبی نے بھی خداوند کو تخت پر دیکھا اور اس کے گرد بھی کمان تھی پہلے باب کے اندر وہ اس کی نہایت ہی عجیب و غریب تصویر پیش کرتے ہوئے 4 جانداروں کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے
And the 4 living creatures had each of them 6 wings about him and they were full of eyes within and they rest not day and night saying holy 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 Lord God Almighty who was and who is and is to come Revelation 4
8 ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہے جا رہے ہیں कि कदूस 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 खुदावंद कादर मुतलिक जो था और जो है और जो आने वाला है। हिजकीएल 4:8।
The 24 elders who had their crowns on their heads prostrated before the Lord and threw their crowns at his feet, crying out to him who alone is worthy. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Revelation 4:11.
24 बुजुर्ग जिनके सरों पर ताज हैं खुदावंद के सामने गिर पड़े और ये कहकर अपने ताज इसके सामने डाल दिए कि ए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। मुकाशफा 4:11। आमीन।
Chapter 5, The Mysterious Book with the Seven Seals.
पांचवें बाप का ताल्लुक इस पुर असरार किताब के साथ है जो तख्त पर बैठे हुए के हाथ में है।
Chapter 5 deals mainly with the mysterious book in the hand of him who sits on the throne.
बाब पांचवें का ताल्लुक इस पुर असरार किताब के साथ है जो तख्त पर बैठे हुए के हाथ में है।
This book is sealed with seven seals on the back side.
इसको सात मुहरें लगाकर बंद किया गया है।
And I saw strong angels proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the scroll and to loose its seals? And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the scroll, neither to look on it. Revelation 5:2-3.
इसके बारे में लिखा है कि फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन है इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक, और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के काबिल ना निकला। मुकाशफा 5:2-3।
दिस इवेंट ट्रांसपायर्स बिफोर आवर आईज लाइक अ ड्रामा शोइंग द डिफरेंट रोल्स to convey what is meant, so we can comprehend what lies behind these mysterious symbols.
ये वाकया हमारी आंखों के सामने एक ड्रामे की तरह घूमता है और जो कुछ इसका मतलब है इसे बयान करता है, ताकि जो कुछ इन भेदों में पोशीदा है हम इसे समझ सकें।
John wept because nobody in heaven nor on earth was worthy to take the book and to look into the same.
योना ये देखकर रोने लगा कि कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे इस किताब को खोलने और इस पर नजर करने के काबिल ना निकला।
Then he was told that there is one.
लेकिन इसे ये कहकर तसल्ली दी गई कि मत रो।
Behold the lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the scroll and to loose its seven seals. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four living creatures and in the midst of the elders stood a lamb, as though it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God sent forth into all the earth.
देख यूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है इस किताब को खोलने के लिए गालिब आया, और मैंने इस तख्त और चारों जानदारों और इन बुजुर्गों के बीच में गोया जबा किया हुआ एक बरा खड़ा देखा। इसके सात सींग और सात आंखें थी। ये खुदा की सातों रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं।
And he came and took the scroll out of the right hand of him that sat upon the throne. Revelation 5:6-7.
इसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दहने हाथ से जो जमीन पर इस किताब को ले लिया। چونکہ یہ واقعہ نئے عہد نامہ کی کلیسیا میں فضل کے زمانے سے ہوا، اس لیے اس کتاب کو لینے والا ببر نہیں بلکہ برا ہے۔
The lamb, not the lion, took the book.
اور
because this act transpires during the time of grace of the New Testament church.
اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کہ دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا، چونکہ واقعہ نئے عہد نامے کی کلیسیا میں فضل کے زمانے سے ہوا، اس لیے اس کتاب کو لینے والا ببر نہیں بلکہ برا ہے۔
Here, the Son of God is being described as the Lion of the tribe of Judah, which speaks of him as king.
اس موقع پر خدا کے بیٹے کو یہودا کا ببر کہہ کر متعارف کرایا گیا۔
On the other hand, he was seen as the Lamb, which shows him as the Redeemer in connection with the redeemed.
اس کا مطلب اس کی بادشاہی حیثیت کو عیاں کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے برے کی طرح بھی دیکھا گیا۔ اس بات کا تعلق نجات دہندہ اور نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ ہے۔
Only the Lamb of God who redeemed us is worthy to take this book, to break the seals and to reveal all that is hidden in this book.
وجہ یہ صرف خدا کا برا ہی ہے جس نے ہمیں چھڑایا ہے، اور وہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہروں کو کھولنے اور جو کچھ اس کتاب میں پوشیدہ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لائق ہے۔
And when he had taken the scroll, the four living creatures and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden bowls full of incense, which are the prayers of saints.
جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔
And they sang a new song saying, Thou art worthy to take the scroll and to open the seals, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nations, and hast made us unto our God a kingdom of priests, and we shall reign on the earth. Revelation 5:8-10.
اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو ان کے لیے خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ مکاشفہ 5:8-10.
It is certainly not so that only a few priests as a clergy are destined to act in a state church, but rather that all redeemed are dedicated unto God, as it is written, and hath made us a kingdom of priests and to God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Revelation 1:6. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own. 1 Peter 2:9a.
یہ بات درست نہیں کہ خدا نے صرف مخصوص لوگوں کو ہی خادم الدین بنا کر ریاستی کلیسیا میں مقرر کیا ہے، بلکہ اس کے برعکس خدا نے تمام نجات یافتہ لوگوں کو مخصوص کیا ہے۔ پترس رسول لکھتا ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کے خاص ملکیت ہے۔ 1 Peter 2:9.
The four living creatures before the throne do have a special task in connection with the redeemed church.
وہ چاروں جاندار جو تخت کے ارد گرد کھڑے ہیں، ان کو کلیسیا کے لیے ایک خاص کام سونپا گیا ہے۔
Therefore, they appear only at the opening of the first four seals.
اس لیے وہ صرف پہلی چار مہروں کو کھولے جانے کے وقت ہی ظاہر ہوئے۔
they are not mentioned and could not be in the last three seals.
इनके अलावा वो चार मोहरों के खोले जाने के वक्त ही जाहिर हुए.
The four horse riders are also only shown in the first four seals and not in the last three.
इनके अलावा वो चार घोड़सवार भी सिर्फ पहली चार मोहरों के साथ दिखाई दिए गए हैं.
In the 24 elders, almost unanimously, Bible scholars see the 12 patriarchs as representative of the Old Testament and the 12 apostles as representatives of the New Testament.
लेकिन जहां तक 24 बुजुर्गों का ताल्लुक है, इनके बारे में बाइबल के तकरीबन सभी उलमा का ख्याल है कि इनमें से 12 पुराने अहदनामा के बुजुर्गों की नुमाइंदगी करते हैं और 12 नए अहदनामा के 12 रसूलों की नुमाइंदगी करते हैं.
Here we find indicated that the fullness of all from the nations and also from the 12 tribes is complete in view of the millennial reign.
इसका मतलब यह है कि इन 24 बुजुर्गों ने हजार साल बादशाह में दाखिल होने के लिए तमाम कौमों के रास्ते तैयार किए हैं.
In this connection, nothing is said about the rapture or the wedding supper in heaven, but rather on the reign on earth.
ताहम यहां कलीसिया के ऊपर उठाए जाने या बरा की शादी की ज़ियाफ़त का कोई जिक्र नहीं किया गया. अलबत्ता जमीन पर बादशाही के लिए बादशाही करने का जिक्र जरूर आया है.
The heavenly host is joined by 10,000 times 10,000 into the song of praise, as was not known until that moment.
आसमानी लश्कर जिसका शुमार लाखों और करोड़ों के हिसाब से है, इस हमदोसना में शरीक हो गया और जिसको इससे पहले कोई जानता तक ना था.
They cry out together, "Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. And every creature that is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea and all that are in them heard I saying, Blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. Amen. Revelation 5, 12 and 13.
वो मिलकर बुलंद आवाज से कहने लगा कि ज़बह किया हुआ बरा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है. फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे के और समंदर के सब मखलूकात को यही सब चीज़ों को जो इनमें हैं ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बरा की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे. और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिर कर सजदा किया. मुकाशफा 5 बाब उसकी 12 और 13 आयत.
फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इट इज ऑब्वियस दैट दिस हैज टू डू with the realization and completion of the divine plan of salvation with humanity, wherein the whole creation partakes and joins in the praise.
مندرجہ بالا واقعات سے صاف آیاں ہے کہ اس منظر کا تعلق خدا کے اس الہی منصوبے کے ساتھ ہے جو اس نے انسانیت کے لیے تیار کر رکھا ہے.
At that moment, all creatures which were put under vanity and were suffering and groaning will participate in the liberty that the redeemed shall receive. Romans 8, 19-25.
इसी मंसूबे के तहत तमाम मखलूकात उसकी हमद और सताइश में शरीक होती है. यही वो वक्त होगा जब मखलूकात जो बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी फना के कब्जा से छूट कर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएंगी. रोमियो 8 बाब 19-25 आयत.
It is impossible for us to visualize and to picture what freedom the whole universe will experience at that moment.
در حقیقت جو آزادی تمام مخلوقات کو دی جائے گی اس کی صحیح تصویر کھینچنا مشکل ہے.
God will place back all he created for his glory into its original destination and will receive the praise from the whole universe. Amen.
खुदा ने जिस चीज को अपने जलाल के लिए खलक किया है उसकी असल सूरत पर वापस लाएगा ताकि तमाम कायनात से हम दस्ताइश हासिल कर सके. आमीन.
चैप्टर 6, the opening of the seals, the unveiling of the power of the Antichrist,
छठा general view. छठा बाब, मोहरों का खुलना और मुखालिफ मसीह की कुव्वत को बेनकाब करना. मंजरे आम.
In chapter 6, we find the description of the first six seals.
छठे बाब के अंदर पहली छह मोहरों का जिक्र किया गया है.
In the book, the revelation of the seven seals, they are dealt with thoroughly.
چونکہ ان کی مفصل تفسیر تشریح سات مہروں کے مکاشفے کی کتاب کے اندر کی گئی ہے.
We therefore shall only briefly touch on them as we have done with the seven church age messages.
اس لیے جس طرح ہم نے سات کلیسیائی زمانوں کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے اس طرح ان کا بھی مختصر ذکر کیا جائے گا.
In the first four seals, a rider is shown on a horse, but each time the horse has a different color.
پہلی چار مہروں کے اندر ایک گھوڑا سوار دیکھا گیا ہے لیکن ہر مہر کے اندر گھوڑے کا رنگ فرق ہے.
It is noteworthy in this connection that the four living creatures stand on God's side before the throne, and these four riders are on the opposite side serving the adversary.
یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ چاروں جاندار جو تخت کے سامنے ہیں وہ خدا کی طرف ہیں جبکہ چاروں گھوڑوں کا سوار دشمن کی طرف ہیں.
Since time began, a horse has always signified the declaration of war.
چونکہ گھوڑا ہمیشہ اعلان جنگ کی علامت رہا ہے.
Here we see the adversary of Christ who started his religious campaign against the victorious campaign of our Lord Jesus Christ here on earth.
इसलिए यहां मुखालिफ मसीह को देखते हैं जिसने इस जमीन पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की फतामंद मुहिम के मुकाबले में अपनी मजहबी मुहिम का आगाज कर रखा है.
The prophet Zechariah speaks of four horses which later were shown before four wagons. Zechariah 2:6.
Zechariah نبی نے بھی چار گھوڑوں کا ذکر کیا ہے جو بعد میں چار رتوں کے آگے دکھائے گئے ہیں. Zechariah 6:2-6.
The same colors are seen with the four horses in the four seals.
جو رنگ ان گھوڑوں کے تھے وہی چار مہروں کے گھوڑوں کے بھی ہیں.
In Zechariah, it deals with the dispersing and persecution of the Jews, and the book of Revelation deals with the persecution and war against the true church.
Zechariah نبی یہودیوں کے تتر بتر ہونے اور ان کی مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے جبکہ مکاشفہ کی کتاب کلیسیا پر ڈھائے جانے والے مظالم اور اس کے خلاف کی جانے والی جنگ کا ذکر کرتی ہے.
The demonic powers which served in the Roman Empire to destroy and persecute Israel are the same ones persecuting the New Testament church from the very beginning.
شیطانی طاقتوں نے جس طرح رومی حکومت کے ذریعے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا کر ان کو تیس نیس کرنا شروع کیا اسی طرح وہی طاقتیں شروع سے ہی نئے عہد نامے کی کلیسیا پر بھی ظلم ڈھا کر اس کو تیس نیس کرنا چاہتی ہیں.
The imitator of Christ rides on the four different horses.
مسیح کا لبادہ اڑنے والے مختلف رنگوں کے چار گھوڑوں پر سوار نظر آتا ہے.
The color always speaks of the developments during a certain period.
رنگ ہمیشہ کسی زمانے کی تعمیر و ترقی کی نمائندگی کرتا ہے.
The prophet Joel saw these destroying forces, the Antichrist powers, as four different insects: the palmer worm, the locusts, the canker worm, and the caterpillar, Joel 1:4.
Joel نبی نے مخالف مسیح کی ہلاک کرنے والی قوتوں کو چار مختلف ٹڈیوں کی صورت میں دیکھا. Joel 4 باب.
The New Testament church represents Christ in his fullness.
نئے عہد نامہ کی کلیسیا مسیح کی کامل معموری کی نمائندگی کرتی ہے.
He is the fruit tree, the tree of life, and we are in him.
یسوع زندگی کا ایک پھلدار درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں.
He is the vine and we are the branches. John 15.
یوحنا 15. یسوع زندگی کا ایک پھلدار درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں.
The adversary has tried to destroy this divine fruit tree in four stages through the four horse riders.
دشمن نے اس الہی پھلدار درخت کو چار زمانوں میں چار مختلف گھوڑ سواروں کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی ہے.
But God promised by the same prophet to restore this tree. Joel 2:25.
لیکن خدا نے اپنے اسی نبی کے ذریعے اس درخت کو بحال کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے. Joel 2:25.
The first three seals are already history. The fourth seal extends right to the end of the New Testament church.
پہلی تین مہریں تو اب تک تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں، لیکن چوتھی مہر کا دائرہ نئے عہد نامہ کی کلیسیا کے اختتام تک پھیلا ہوا ہے.
The fifth seal concerns itself, as we shall see, with the Jews.
پانچویں مہر، جیسا کہ آگے چل کر دیکھیں گے، کہ یہودیوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے.
The sixth seal has to do with the space when all the judgments of wrath will fall.
چھٹی مہر کا تعلق مصیبتوں کے دور کے ساتھ ہے.
The seventh seal contains the seven trumpet judgments which fall into the time space of the sixth seal.
لیکن ساتویں مہر کے اندر ان سات نرسنگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو چھٹی مہر کے اندر پھونکی جائیں گی.
First seal, the Antichrist in his first stage, the insignificant beginning.
پہلی مہر مخالف مسیح کی پہلی منزل.
As the Lamb was about to open the first seal, one of the four living creatures cried with a voice of thunder, "Come!"
جو ہی برے نے پہلی مہر کھولی تو چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ.
John then records what he saw and heard, "And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer." Revelation 6:2.
تب یوحنا نے جو کچھ دیکھا اور سنا اس کا یوں ذکر کرتا ہے کہ میں نے نگاہ کی کہ تو کیا دیکھتا ہے، کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا ہے اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. مکاشفہ 6:2.
Behind this picture, no one can suspect something evil unless it is revealed by the Holy Spirit.
مدرجہ بالا منظر کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے؟
This was the beginning of the power of the Antichrist in its first insignificant stadium.
یہ مخالف مسیح کی طاقت تھی جو ابتدا میں بڑی معصوم دکھائی دی.
The white color of this horse shows that at first this spirit was an innocent doctrine and not yet stained with blood.
اس گھوڑے کا سفید رنگ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابتدا میں یہ اس قدر بے ضرر تعلیم تھی کہ اس پر خون کا ایک دھبا تک بھی نہ لگا تھا.
It was not yet able to be so because in the beginning it did not possess the worldly power.
और इसकी वजह ये भी थी कि अभी इसके हाथ में दुनियावी इख्तियार ना था.
At first, this movement presented itself in a religious and Christian-like manner.
पहले पहल तो इस तहरीक ने अपने आप को मजहबी और मसीही तौर तरीके के साथ मुतारफ कराया, लेकिन बाद में इस घोड़े का सवार
The rider, however, was then manifested as a deceiver.
लेकिन बाद में इस घोड़े का सवार एक धोखाबाज साबित हुआ.
He had a bow but no arrow, and therefore he was only a bluffer.
इसके हाथ में कमान तो थी लेकिन तीर नहीं था.
Contrary to Christ, whose name is the Word of God, Revelation 19:13, the adversary has no name, only titles.
जबकि मसीह, जिसका नाम कलामे खुदा है, इसके मुकाबले में इसके मुखालिफ का कोई नाम नहीं, बल्कि सिर्फ लकब ही है. मुकाशफा 19:13.
Paul already spoke of these men. Who would come up with strange doctrines and draw disciples after themselves. Acts 20:29-31.
मुकद्दस पालूस रसूल ने अमाल की किताब में ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो उल्टी सीधी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें. अमाल 20:29-31 आयत.
This religious movement obviously soon preached another Jesus, another gospel, and was under the influence of another spirit. 2 Corinthians 11:3-4.
इसी मजहबी तहरीक ने जल्द ही बड़े वाज़ह तौर पर दूसरे यीशु और दूसरी खुशखबरी की मुनादी शुरू कर दी, जो फ़ियल हकीकत दूसरी रूह की वसातत से थी. 2 Corinthians 11:3-4 आयत.
This faction is outside the word and the gospel of Christ, and therefore under a curse. Galatians 1:6-9.
ये ग्रोह वो कलाम और मसीह की खुशखबरी से बाहर और लानत के मातहत था. Galatians 1:6-9 आयत.
There is no need to make claims to be an apostle or even to act in the place of Christ. 2 Corinthians 11:13-15.
किसी को रसूल कहलवाने या मसीह की जगह काम करने की जरूरत नहीं. 2 Corinthians 2:11-15 आयत.
The true church, founded in God's word, has always examined this false movement, comparing it with the message and practice of the first apostles, and therefore found this false teachers to be liars. Revelation 2:2 and others.
Hakiki Kalisiya ki buniyad Khuda ke kalam par hai, aur isne is galat taleem ka muazna hamesha kalam aur ibtidai rasoolon ki taleem ke sath kiya aur inko jhoota paya. Mukashfa 2:2 uski 3 ayat tak.
As the development took its course, the unscriptural teachings of the Nicolaitans and whatever they practiced was then vested in the one head who was to represent this first organized Christian religion.
Hakiki Kalisiya ki buniyad Khuda ke kalam par hai aur isne is galat taleem ka muazna hamesha kalam aur ibtidai rasoolon ki taleem ke sath kiya.
Only thereafter he received the crown.
Aur inko jhoota paya.
Doctrines and deeds as the development took its course, the unscriptural teaching of the Nicolaitans and whatever they practiced was then vested in the one head who was to represent this first organized Christian religion.
जब तरक्की हो रही थी, जो निकोलेटिन की ये दौर था, ये सब इकट्ठे एक जगह पर हो चुके थे। तब उन्होंने एक फिरके की शुरुआत की।
Only thereafter he received a crown.
और इसके बाद उसने उस ताज को हासिल किया।
Doctrines and deeds cannot be crowned.
लेकिन जो तालीम है वो ताज को जाहिर नहीं करती।
Only a person by whom they are represented.
और वो सिर्फ अपने आप को जाहिर कर रहे थे।
This man of the false system went forth to fight.
और ये उस गलत जो तंजीम थी उसके खिलाफ खड़ा हुआ।
And conquer the true believers.
और जो सच्चाई के साथ थे उनके खिलाफ इसने आवाज उठाई।
The development described in the first seal extended into the first centuries.
और इस बात को दिया जाता है कि जो पहली सील है वो पहली सेंचुरी में जो है उसका मुतारफ करवाया गया।
On all levels, this movement which deviated from God's word made headway until it finally became the recognized state church with the privilege of earthly power since the time of Constantine.
तमाम सतों पर ये तहरीक जो खुदा के कलाम से इनहराफ करती है आखिरकार कंस्टेंटाइन के ज़माने में से दुनियावी ताकत के इस्तेहकाक के साथ रिक्वायर्ड रियासती चर्च बन गया।
फ्रॉम देन ऑन द चर्च वाज सर्विंग द स्टेट फ्रॉम देन ऑन द चर्च वाज सर्विंग द स्टेट एंड द स्टेट वाज सर्विंग द चर्च।
तब से चर्च रियासत की खिदमत कर रहा था और रियासत चर्च की खिदमत कर रही थी।
The first seal covers about the space of the first three church ages.
पहली मोहर चर्च के पहले तीन दौरों की जगह पर महित है।
From the very beginning, this antichrist power existed parallel to the true church of Jesus Christ.
शुरू से ही मुखालफे मसीह जो है वो यीशु मसीह के सच्चे चर्च के लिए इसके मुतरादिफ हैं।
It started as a very insignificant doctrine of the Nicolaitans. Revelation 2:6.
इसका आगाज निकोलाइटन की एक मासूमाना तरीके के साथ हुआ। मुकाशफा 2:6.
John referred to this branch as he wrote, "They went out from us." But they were not of us. 1 John 2:19.
यूहन्ना ने इसका हवाला दिया जैसा कि इस लिखा है वो हमसे बाहर चले गए।
Those who seemed to be believers were deceived by the enemy.
लेकिन वो हम में से नहीं थे।
After they were separated from the biblical church and went astray.
और उसके बाद वो हम में से अलग हो गए।
Later, they became prey to the teachings of Balaam, Revelation 2:14.
और बाद में वो बलाम की तालीम देना शुरू हो गए, मुकाशफा 2:14.
Which brought spiritual death.
जिसने रूहानी मौत लाई.
And finally suffered the woman Jezebel, who was a false prophetess, Revelation 2:20, to be their spiritual leader.
और एतहादी ने इज़बेल औरत जो कि एक झूठी नबी थी मुकाशफा 20:2 को इनका रूहानी पेशवा बनाना पड़ा।
आमीन
आमीन।
सेकंड सील द एंटीक्राइस्ट इन हिज सेकंड स्टेज द एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड ब्लड शेड।
दूसरी मोहर मुखालफ मसीह का दूसरा दौर कुव्वत का इस्तेमाल और खून रेजी।
At the opening of the second seal, the second living creature cried, "Come!" And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat on it to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given to him a great sword. Revelation 6:4.
दूसरी मोहर के खुलते वक्त दूसरे जानदार ने कहा कि आ, फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था. इसके सवार को यह इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुला उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और इसे एक बड़ी तलवार दी गई. मुकाशफा 6:4.
John did not see as in a first phase a white horse, but rather a red one.
योहन्ना ने इससे पहले सफेद घोड़ा देखा, लेकिन अब वो लाल घोड़ा देखता है.
The time of the peaceful coexistence of these two movements was now over forever.
गोया अब इन दिनों तहरीकों का पुरअमन दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया.
The spiritual religious movement, which was Antichrist in word and deed, was now having worldly power, and thereof the persecution of the true believers began, and the sword was being used.
مذہبی روحانی تحریک جو کام اور کلام کے لحاظ سے مسیح کے مخالف تھی اب ایک دنیاوی قوت بن گئی.
And as all should know from church history, much blood was shed by organized fanatical religion.
یوں ایمانداروں پر ظلم اور تشدد شروع ہو گیا.
This writer did not have God's word as the sword of the Spirit, but rather was using a worldly sword by worldly power.
اس سوار کے پاس خدا کا کلام جو روحانی تلوار ہے نہ تھی، لیکن دنیاوی طاقت کے بلبوتے پر دنیاوی تلوار چلا رہا تھا.
Peace was taken from the earth. Nations and tribes. And tribes fought one another in the name of religion.
یوں دنیا سے امن اٹھا لیا گیا، اور مختلف قوموں اور قبیلوں نے مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا.
In the second phase, this religious but antichrist power was symbolized by this rider.
یہی وجہ ہے کہ دوسرے مرحلہ پر اس سوار کی مشابہت ایک مذہبی مگر مخالف مسیح کی قوت کے ساتھ دی گئی.
That period speaks of the time of persecution.
اس وقت کو ازار ثانی کا دور کہا جاتا ہے.
This fact is shown by the red color of the horse.
یہی وجہ ہے کہ یہاں اس کو لال رنگ کے گھوڑے کے روپ میں دکھایا گیا ہے.
The blood of the martyrs was shed.
اس دور میں لوگوں کو بری طرح شہید کیا گیا.
The second seeds falls into the time when people were forced to accept the Catholic state religion and extend it right into the dark ages.
دوسری مہر کا تعلق اس زمانے سے ہے جس میں لوگوں کو سرکاری کیتھولک مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا گیا.
آمین.
Amen.
Third seal, the Antichrist in his third stage.
تیسری مہر مخالف مسیح کا تیسرا دور، تاریک زمانہ.
The dark ages.
تاریک زمانہ.
At the opening of the third seal, the third living creature cried, "Come!" And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the four living creatures say, "A measure of wheat for a denarius, and three measures of barley for a denarius. And see thou hurt not the oil and the wine." Revelation 6:5-6.
تیسری مہر کے کھلنے پر تیسرے جاندار نے کہا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے، اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے ایک آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھرا، اور جو دینار کے تین سیر اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. مکاشفہ 6:5-6.
After the time of subduing those who believed in a great way, a period of terrible suffering set in.
जो लोग जुरत के साथ ईमान पर डटे रहे उनको जेर करने के बाद एक होलनाक अजियत का दौर शुरू हो गया.
Death took its prey in one way or the other richly.
मौत ने लोगों का भरपूर तरीके से शिकार किया.
The dark ages are symbolized by the black horse.
इस तारीख जमाने के काले घोड़े के साथ तशबीह दी गई है.
The rider is the one who has assumed power, for he is holding the scale in his hands.
इसका सवार एक ऐसी शख्सियत है जो बड़ा इख्तियार हासिल कर चुकी है.
Now everybody was depending on the welfare of this man and the system he represented.
अब हर शख्स इसके रहम और करम पर तकिया करने के लिए मजबूर है.
He decided who would or would not receive something.
इसे ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी को कुछ दे या ना.
Those who did not submit to him had to suffer.
जिन लोगों ने अपने आप को इसके लिए इसके हवाले ना किया इनको अजियत हासिल करनी पड़ेगी.
They were actually a great number and therefore death followed his campaign.
ऐसे लोगों का शुमार बहुत ज्यादा था, गोया इस मुहिम में मौत इनका ताकुब कर रही थी.
As this the description shows, there was a time of natural shortage, a measure of wheat for denarius and three measures of barley for denarius.
जैसा कि तफसील के साथ बयान किया गया है कि यह दुनियावी चीजों की कमी का एक ऐसा वक्त था जिसमें गेहूं दिनार के सैर भर और जो दिनार के तीन सैर बिकने लगे.
Oil and wine, however, could not be hurt.
ताहम तेल और मैं को कोई नुकसान ना पहुंचा.
In a figurative way of speaking, in the spiritual realm, oil symbolizes the Holy Spirit and the revelation of the Word of God given by the saint.
रूहानी इस्तेलाह में तेल को रूल कुद्दस और खुदा के कलाम के मुकाशफे के साथ तशबीह दी गई है.
And wine speaks of the stimulation a person receives through a true revelation received from the Spirit of God.
जबकि मैं इस जुम्बश को जाहिर करती है जो खुदा के रूह के वसीला से हासिल किए हुए मुकाशफा के जरिए मिलती है.
In any case, the true believers were deprived of the natural privileges.
इस दौर में ईमानदारों को दुनियावी सहूलियात से महरूम होना पड़ा.
The third seal extends through the Reformation period into the 18th century, which is known as the Age of Enlightenment, whereupon the separation of church and state followed, which led to a limitation of the religious power. Amen.
इस्लाह के दौर से 18वीं सदी तक फैला हुआ है, जिसे रोशन ख्याली का दौर कहा जाता है, जहां चर्च और रियासत की अलहदगी के बाद मजहबी ताकत की हद तक इसको लिया जाता है. आमीन.
आमीन. Fourth seal. The Antichrist in his fourth stage. The death bringing mixture.
चौथी मुहर. मुखालफ़े मसीह का चौथा दौर.
At the opening of the fourth seal, the fourth living creature cried with a loud voice, "Come!" And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hades followed with him. And power was given unto him and to them over the fourth part of the earth to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. Revelation 6:8.
चौथी मोहर के खुलते वक्त चौथे जानदार ने कहा कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है और इसके सवार का नाम मौत है और आलम अरवा इसके पीछे पीछे है. उनको चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें. मुकाशफा 6:8.
In this fourth stage, the outward religious and Christian power is in reality a worldly superpower and will last to the end of the present church age.
چوتھے دور میں بظاہر مذہبی اور مسیحی قوت ایک حقیقی دنیاوی قوت بن گئی جو موجودہ اکلیسیائی زمانے کے اختتام تک قائم رہے گی.
In the last and fourth stage of development, which exists now, the first three colors are merged.
ترقی کے آخر اور چوتھی منزل پر جو اب نظر آ رہی ہے اس میں تینوں رنگ آپس میں گھل مل جائیں گے.
If one mixes the first three colors together, we then have the fourth one.
اگر کوئی پہلے تین رنگوں کو آپس میں ملائے تو ان میں سے چوتھا رنگ پیدا ہوگا.
There is nothing seen of the white which started innocently at the beginning, also nothing of the blood red in its second stage. Again, we cannot see exactly the third stage represented by the black horse.
اب اس میں وہ سفیدی جو ابتدا میں بڑی پاک اور معصومیت کے ساتھ شروع ہوئی دیکھنے میں بھی نہیں آتی.
At the end, all these colors, which signify the actual state of a certain period, cannot be identified.
نہ صرف یہ بلکہ اب تو وہ خون رنگ بھی جو دوسری مہر میں ظاہر ہوا نظر آتا ہے اور نہ ہی تیسری مہر کی وہ صورت جس کی نمائندگی کالے گھوڑے نے کی دیکھنے کو ملتی ہے.
It is the pale or gray or pale color represented by the last horse and its rider.
نہ صرف یہ بلکہ اب تو وہ خون نما لال رنگ بھی جو دوسری مہر میں ظاہر ہوا نظر نہیں آ رہا نہیں آتا.
This rider is called death.
اور جو اس گھوڑے کی نمائندگی کر رہا ہے اس کو موت کہا جاتا ہے.
No wonder the scripture says, and Hades followed with him.
اور اس میں تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں کہ اس کے بارے میں کلام یوں کہتا ہے.
As certain as divine life comes through Jesus Christ, spiritual death comes through the Antichrist and his system.
عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے جس طرح روحانی زندگی یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہوتی ہے اسی طرح روحانی موت مخالف مسیح اور اس کے نظام کے ذریعے حاصل ہوتی ہے.
In this fourth rider, we see the constellation describing the end time as we now see it with our own eyes.
چوتھے سوار میں جیسا کہ اب نظر آ رہا ہے آخری وقت کی ایک تصویر کو دیکھا جا سکتا ہے.
Humanity does not even think that this world institution is being spoken of in the four seals.
لوگ تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے کہ دنیا کے اس عظیم ادارے کا ذکر چار مہروں میں کیا گیا ہے.
Everything is united therein.
ان میں سب کچھ متحدہ کر دیا گیا ہے.
Sometimes it looks and talks like a lamb. Then there are persecutions and the masses are being ruled.
بعض اوقات یہ برے کی طرح بولتا اور دکھائی دیتا ہے لیکن یہ اظہار ثانی اور حکمرانی بھی کر رہا ہے.
The preeminence is seen on all levels.
اس کی عظمت ہر مقام پر دیکھی جا سکتی ہے.
There is still a form of religion left, but no trace of God's power is found therein.
مذہبی وضاحت تو اب بھی موجود ہے لیکن خدا کی قوت کا کوئی نام و نشان نہیں.
The actual goal is the executing of worldly power under a religious cloak.
اصلی مدعا لبادہ اوڑھ کر دنیاوی طاقت کو استعمال کرنا ہے.
This is made plain by the proud rider of the horse.
چوتھی مہر کے اندر یہی وہ بات ہے جو چوتھے متکبر گھوڑے کے اندر دکھائی دی.
The first four seals uncover the Antichrist developments right from the beginning of the New Testament.
پہلی چار مہروں میں نئے عہد نامے کی ابتدا سے مخالف مسیح کی درجہ بدرجہ ترقی کو عیاں کیا گیا ہے.
The four stages were already mentioned by the prophet Joel, who spoke about the four insects trying to destroy this fruit tree of God. Joel 1:4.
In charo madaraj ka zikr Joel nabi ne bhi char keedon ki surat mein kiya hai jo is phaldar darakht ko khatam karne ki koshish kar rahe hain. Joel 1:4.
The prophet Zechariah mentioned these developments by referring to the four horses. Zechariah 1:8 and 6:2-5, also being symbolized by the four horns. 1:18-22.
Taham Zakariya nabi ne iska zikr char ghodon ki surat mein kiya hai. Zakariya 1:8 aur 6:5 مخالف مسیح جو ہر سوار کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے بذات خود اس دنیاوی ادارے کا سربراہ ہے.
The Antichrist himself is the head of this world institution and is represented in each of the riders holding the reins in his hands.
مخالف مسیح جو ہر سوار کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے وہ خود اس دنیاوی ادارے کا سربراہ ہے.
That is to say, the religious power is ruling and subduing the earthly power of which he is making use. Amen.
इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो ताकतें हैं ये अपना काम खुद से कर रही हैं. Amen.
Amen. Fifth seal, the Jewish martyrs of the past and the future.
पांचवी मोहर माजी और मुस्तकबिल के शहीद यहूदी.
At the opening of the fifth seal, there is no more cry of a living creature.
पांचवी मोहर के खोले जाने पर किसी जानदार ने आवाज नहीं दी.
This is not possible because this seal is not in connection with the New Testament church.
और इसकी वजह यह है कि इस मोहर का ताल्लुक नए अहदनामा की कलीसिया के साथ नहीं.
The fifth seal falls partly in the time of grace as touching the Jewish martyrs of the past and the second part will be fulfilled after the bright church is taken to glory.
पांचवी मोहर का कुछ हिस्सा फजल के जमाने के साथ मुंसलिक है और इसमें माजी में शहीद होने वाले यहूदियों का जिक्र किया गया है जबकि दूसरा हिस्सा इस वक्त पूरा होगा जब दुल्हन कलीसिया जलाल में ऊपर उठा ली जाएगी.
The fullness of the Jewish martyrs will be in the great tribulation.
इसके बाद मुसीबतों के दौर में यहूदियों की शहादत का काम मुकम्मल हो जाएगा.
Those who belong to the New Testament church go into paradise after leaving this earth.
इस वक्त जो लोग नए अहदनामा की कलीसिया में होंगे वो इस जमीन से उठा लिए जाएंगे.
The souls of the Jewish martyrs are under the altar.
जबकि यहूदी शहीदों की रूहें कुर्बानगाह के नीचे होंगी.
They cannot as yet enter the glory of God because they did not accept the reconciliation in Christ.
چونکہ ان لوگوں نے مسیح کو قبول نہ کیا اس لیے وہ اس وقت خدا کے جلال میں داخل نہیں ہو سکتے.
And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood of them that dwells on the earth? And white robes were given unto every one of them. And it was said unto them that they should rest yet for a little season until their fellow servants also and their brethren that should be killed and they were as they were should be fulfilled. Revelation 6:9-11.
और जब इसे पांचवी मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे देखा जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोले कि ऐ मालिक ऐ कदूस ऐ बरहक तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा और इन्हें और हमें इनसे हर एक को एक सफेद जामा दिया गया और इनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं. मुकाशफा 6:9-11.
Those Jews who were martyred in the past 1,500 years, including the 6 million being killed during the 20th century, did not have the testimony of Jesus Christ.
जो यहूदी माजी के 1,500 सालों में उन 60 लाख यहूदियों समेत जो 20वीं सदी में शहीद हुए,
they had the testimony of God's word as entrusted to Israel.
इनके पास मसीह की गवाही नहीं बल्कि खुदा के कलाम की गवाही थी जो बनी इसराइल के सुपुर्द की गई थी।
They are calling for vengeance, crying out, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?
वो ये कहकर इंतकाम के लिए पुकार रहे थे कि ऐ मालिक, ऐ कदूस, ऐ बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा?
Those who truly believe in Jesus Christ are reconciled with God and do not cry for vengeance, but rather pray for those who persecuted them, as did their Redeemer in saying, Father, forgive them, for they know not what they do. Luke 23:34.
जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनकी खुदा के साथ सुलह हो चुकी है और वह इंतकाम के लिए नहीं पुकारते बल्कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करते हैं, जिस तरह के उनके निजात दहिंदा ने यह कहकर की कि ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। Luke 23:34।
This was exemplified by Stephen's prayer when he was stoned by his enemies. Lord, lay not this sin to their charge. Acts 7:60।
इसका नमूना स्टीफनस ने भी इस वक्त पेश किया जब इसको संसार कर रहे थे और वो कह रहा था कि ऐ खुदावन, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। Amal 7:20।
The souls under the altar were murdered because of the word of God and the testimony they had as Jews.
कुर्बानगाह के नीचे यहूदी रूहों को खुदा के कलाम और उसकी गवाही के बायस कत्ल किया गया था।
They waited for the coming of the Messiah.
वो मसीह की आमद का इंतजार कर रहे थे।
As already mentioned, they did not have the revelation that Jesus Christ of Nazareth was their Messiah.
जैसा कि पहले बयान किया गया है कि उनके पास ये मुकाशवा ना था कि नासरत का रहने वाला यीशु ही इनका मसीहा है।
Therefore, they are not part of the redeemed of the New Testament Church.
यही वजह है कि वो नए ऐदनामा के निजात याफ्ता कलीसिया का हिस्सा नहीं है।
God had a special way with his people Israel, according to his plan of salvation that he laid down from before the foundation of the world.
खुदा का बनी इसराइल के निजात के लिए एक खास मंसूबा है जिसे इसने बनाए आलम से पेशतर से तैयार कर रखा है।
The people of Israel are predestined to be God's true witness since he made a covenant with them. They are to bear witness of him, the only true God.
खुदा ने जब बनी इसराइल के साथ अहद बांधा इस वक्त से इनको हकीकी गवाह मुकर्रर किया गोया वो इस वाहिद और हकीकी खुदा के गवाह हैं।
Renowned church history experts have taken the view that Israel was put aside by God and the church is taking its place.
कलीसियाई तारीख के बहुत से जाने पहचाने मौरखीन का ख्याल है कि खुदा ने बनी इसराइल को अलग करके इनकी जगह कलीसिया को कायम किया है।
This is totally unscriptural.
लेकिन ये बात कलाम के बिल्कुल मुताबिक नहीं।
God hardened Israel and blinded them for our sake, so that our eyes could be opened, that we might partake of his salvation.
खुदा ने हमारी खातिर इनके दिलों को सख्त और इनकी आंखों को अंधा किया है ताकि हमारी आंखें खुल जाएं और हम उसके निजात में शरीक हो जाएं।
God's calling and gifts with Israel cannot be taken back.
इसराइल के लिए खुदा का बुलावा और नेमतें भी बेतब्दील हैं।
They are irreversible and God does not repent of any decision he made. Romans 11.
और उनको वापस नहीं लिया गया खुदा ने जो फैसला कर रखा है उसे वो पछताता नहीं। Romans 11:11।
The Jewish martyrs are saved although they did not experience a conversion to Christ.
शहीद होने वाले यहूदी गो मसीही तब्दीली का तजुर्बा नहीं रखते थे।
This is because they believed with all their heart and were convinced of the coming of the Messiah and waited to see his day.
और उसकी वजह यह है कि वो खुदा पर अपने पूरे दिल से ईमान लाए और मसीह की आमद के कायल और उसका दिन देखने के मुंतजर हैं।
In the second part of the text pertaining to the fifth seal, we are clearly told that these martyrs have received a white garment, but should wait for a little while until their fellow servants and brethren have also been killed as they were.
पांचवी मोहर के दूसरे हिस्से में ये बात साफ तौर पर बताई गई है कि इन शहीदों को सफेद जामे दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि वो और थोड़ी मुद्दत इंतजार करें।
Those belonging to the New Testament Church are always referred to as sons and daughters.
जो लोग नए अहदनामे की कलीसिया के साथ ताल्लुक रखते हैं उनको बेटे और बेटियां कहा गया है।
Those from Israel are called servants and handmaidens.
जबकि बनी इसराइल को बंदे और बंदियां कहकर पुकारा गया है।
This terminology is found distinctly in Acts 2:17-18.
यह मुहावरा अमाल 2:17 और 18 आयत में है।
In connection with the outpouring of the Holy Spirit, which takes place on both, first upon sons and daughters, then upon the servants and handmaidens. Amen.
और रूह कुदस के नजूल के सिलसिले में बड़ी नुमाया अंदाज से बयान किया गया है कि किस तरह पहले बेटे और बेटियों पर और बाद में बंदे और बंदियों पर नाजिल होगा। आमीन।
सिक्स्थ सील,
छठी मोहर।
अ लुक इनटू द बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ द लॉर्ड, वर्ल्ड वाइड नेचुरल कैटास्ट्रोफ्स।
खुदावन का दिन शुरू होने का जायजा और आलमी सतह पर कुदरती आफात।
द सिक्स्थ सील has to do with the end phase of the great tribulation when the day of the Lord is ushered in.
छठी मोहर का ताल्लुक मुसीबतों के बाद के इस इख्तितामी दौर के साथ है जब खुदावंद का दिन शुरू होने को होगा।
To understand the successive order of the predicted events, they are as follows. First, the bright church will be taken into glory.
पेशन गोइयों में बयान करदा वाक्यात के तसलसल को समझने का तरीका मदरजा जेल है। सबसे पहले दुल्हन कलीसिया को जलाल में ऊपर उठा लिया जाएगा।
About that time, the covenant between the Vatican, Israel, and the Palestine, and the Arab neighboring states will be made, and the 3.5 years ministry of the two prophets in Jerusalem will commence.
इसके बाद वेटिकन इसराइल अरब ममालिक और फलस्तीनियों के दरमियान एक माहदा तय पाएगा। इसके साथ ही यरूशलेम में दो नबियों की खिदमत का आगाज होगा।
After the completion of their ministry, the 144,000 Jews will be ready on Mount Zion.
इनके खिदमत के इख्तिताम पर कोहे जैतून पर 144,000 यहूदी तैयार होंगे।
The covenant will be broken,
फिर माहदा,
and the two prophets will be killed.
फिर मुहैदा तोड़ा जाएगा और दोनों नबियों को कत्ल कर दिया जाएगा।
Then the 3.5 year period of the great tribulation and persecution, especially upon the Jews, Daniel 7:25, and the power of the Antichrist all over the nations will be experienced, Revelation 13:5-7.
इस वाक्या के साथ दानियल 7 उसकी 25 की पेशन गोई के मुताबिक यहूदियों के लिए मुसीबतों के 3.5 साल शुरू हो जाएंगे और तमाम दुनिया को मुखासे मसीह की कुवत का सामना करना पड़ेगा। मुकाशफा 13:5-7।
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give its light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Matthew 24:29.
उसके बारे में कलाम मुकद्दस यूं फरमाता है कि फिर इन दिनों की मुसीबतों के फौरन बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हलाई जाएंगी। मत्ती 24 उसकी 29 आयत।
During that short space of time, many worldwide catastrophes and global changes will take place.
इस कुलील अरसा के दौरान दुनिया में बढ़ती आफतें और जमीनी तब्दीलियां वकूं में आएंगी।
During this time also will be the 7 trumpets and 7 vials.
यही वो वक्त होगा जब 7 नरसिंगे फूंके और 7 प्याले उंडेले जाएंगे।
In the sixth seal, heaven and earth will be shaken and undergo a purifying process.
छठी मोहर के दौरान आसमान और जमीन हिलाए जाएंगे ताकि वो पाकीजगी के अमल में से गुजर सकें।
Then will happen what is being feared now. Meteorites will fall down, for down the whole universe will be shaken.
इस वक्त जिस चीज से हम खौफ ज़दा हैं वो तवक्का में आएगी, यानी सितारे आसमान से गिरेंगे और तमाम कायनात को हिला दिया जाएगा।
एंड आई beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Revelation 6, 12-14.
12-14 आयत में मरकूम है कि जब इसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमाल की मानद काला और सारा चांद खून सा हो गया और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लिपटने से सिरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गए।
At that time, there will be terrible confusion and distress on earth.
इस मौका पर जमीन पर सख्त अफरा तफरी होगी।
What people never imagined of will suddenly come upon the old world.
और जो लोगों के वहम और गुमान में भी ना होगा वो दुनिया में वकू पजीर होगा।
That is when the time of the Gentiles who have trodden down Jerusalem is finished. Luke 21:24.
गैर कौमों में जिन्होंने यरूशलम को पामाल किया इनके मियाद खत्म हो जाएगी। लूका 21 उसकी 24 आयत।
And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring, men's heart failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Verse 25 and 26.
और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों की बड़ी तकलीफ होगी क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी। लूका 21:25 उसकी 25 से 26 आयत।
In the following verses, the despair is being expressed. And the king of the earth and the great men and the rich men and the chief captains and the mighty men, and every slave and every free man hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Revelation 6. 15-17.
जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छुपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें इसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बरा के गजब से छुपा लो, क्योंकि इनके गजब का रोज अजीम आ पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है।
The teaching about the rapture taking place after the Great Tribulation is unscriptural.
ये तालीम के कलीसिया को मुसीबतों में से गुजरना पड़ेगा कलाम-ए-मुकद्दस के खिलाफ है।
We are told that Jesus comes to deliver us from the wrath to come. 1 Thessalonians 1:10b.
इस सिलसिले में हमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि यीशु मसीह हमको आने वाले गजब से बचा लेगा। पहला थसलीकियों 1:10।
For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 5:9 and others.
लिखा है कि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से नजात हासिल करें। 1 Thessalonians 5:9.
The grace of God which was given to all humanity through reconciliation and forgiveness, is then over forever.
In waqiat ke baad khuda ka wo fazl jo maafi aur sulah ke zariye tamam bani anwa insaan ko diya gaya hai khatam ho jayega.
The throne of grace turns into the throne of judgment.
Aur fazl ka takht takte adalat ke takht mein tabdeel ho jayega.
The meek lamb will then become the sovereign judge.
Halim bara munsif ala ki surat ikhtiyar kar lega.
The wrath of God breaks forth at the beginning of the day of the Lord and includes all the preliminary judgments and the cleaning up before the millennial reign commences.
Yun khudavand ka din shuru hote hi ghazab-e-ilahi toot padega aur hazar saala badshahat ki shuru hone se qabl ibtidai faisle aur safai hogi.
For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Revelation 6:17.
Likha hai ki unke ghazab ka roz-e-azim aa pahuncha, ab kaun thehar sakta hai? Mukashfa 6 bab uski 17 ayat.
Many Bible references throw light upon these last events and also show the connection wherein they are to happen.
Bible mein aise kai hawale hain jo aakhri waqiat par roshni dalte hain ki wo kab waqu mein aayenge.
As predicted by the prophet Isaiah, the earth then will move to and fro. The earth is utterly broken down. The earth is thoroughly dissolved. The earth is moved exceedingly. The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a booth, and the transgression thereof shall be heavy upon it, and it shall fall and not rise again.
Iske bare mein Yesaya nabi ne yun peshan goi ki hai ki zameen bilkul ujad gayi, zameen yaksar shakista ho hui aur shiddat se halai gayi, wo matwale ki maned dagmagayegi aur jhompadi ki tarah aage piche sarkai jayegi, kyunki iske gunah ka bojh is par bhari hua, wo giregi aur phir na uthegi. Yesaya 24:19-20 ayat.
Isaiah 24:19-20. In this text, we are told what will happen at the end of this age. But as other scripture passages show forth, thereafter, the whole creation will be placed back into a most glorious state and participate in the millennial reign.
Matzikra bala hawale mein bataya gaya hai کہ زمانہ کے خاتمے پر کیا کچھ ہوگا, لیکن جس طرح کلام کے دیگر حوالے بتاتے ہیں, اس کے بعد تمام زمین کو اس کی جلالی صورت پر واپس لایا جائے گا.
Whatever cannot stand in God's presence will have an end, and whatever is pleasing unto him will take its place. All will be fine again. Amen.
جو کچھ خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کے قابل نہ ہوگا اسے ختم کر دیا جائے گا, اور جسے وہ پسند کرتا ہے وہ قائم رہے گا. یوں سب کچھ درست کر دیا جائے گا. آمین.
آمین.